नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त मकानों को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास दिए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एजेंसियों को राज्यों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि प्रत्येक कॉल को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके और बैंक खातों के फ्रीज होने से उत्पन्न शिकायतों का समाधान किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। गुजरात में वडोदरा में आज एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में एक विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 29वें ओवर में 4 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।